This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. From the United States to Europe and Asia, people in many parts of the world are emerging from their homes as COVID-19-related restrictions begin to ease and springtime temperatures climb. But the global pandemic took a turn for the worse in some places. India on Sunday reported more than 2,600 new cases, its biggest single-day jump. That followed record increases in neighboring Pakistan and Russia the previous day. There was also worrying news from Afghanistan, where about a third tested positive in a random test. China, which reported two new cases, is seeing a surge in visitors to tourist spots, many newly reopened after domestic travel restrictions were relaxed ahead of a five-day holiday that runs through Tuesday. Nearly 1.7 million people visited Beijing parks on the first 2 days of the holiday, and Shanghai's main tourist spots welcomed more than a million visitors, according to Chinese media. Meantime, thousands of migrants are trapped in limbo and at high risk without food, water, or shelter in deserts and at sea. This as governments close off borders and ports amid the coronavirus pandemic. Migrants have been dropped by the truckload in the Sahara Desert or bused to Mexico's desolate border with Guatemala and beyond. They're drifting in the Mediterranean Sea after European and Libyan authorities declared their ports unsafe. And about 100 Rohingya refugees from Myanmar are believed to have died in the Bay of Bengal, as country after country pushes them back out to sea. Worldwide, more than 244,000 people have died from COVID-19, and the number of confirmed cases approaches 3.5 million. This is VOA News. In the United States, more than 66,000 people have died from COVID-19 and more than 1.1 million cases have been reported. The trend is toward states beginning to relax their coronavirus lockdowns, but most are falling short of the minimum levels of testing suggested by the federal government and recommended by a variety of public health researchers. This is according to an analysis by the Associated Press. 3 months into an unprecedented public health emergency, the White House has largely resisted calls for a coordinated plan to conduct the millions of tests experts say are needed to contain the virus. With no specific guidelines, states are left to figure out what a successful testing program should be while they're simultaneously trying to reopen their battered economies. If states don't have robust testing, public health experts say they will be unable to detect outbreaks quickly enough to contain them, which could lead to more shutdowns. In many states, testing has been limited to hospitalized patients, high-risk individuals, and frontline workers, but most public health experts agree that containing the virus will require a massive expansion of testing that eventually includes millions of patients without symptoms, and that's not happening now. U.S. Democratic presidential candidate and former Vice President Joe Biden overwhelmingly won a Democratic presidential primary in the U.S. state of Kansas, conducted exclusively by mail balloting by the state party because of the coronavirus pandemic. Mr. Biden had been expected to prevail and capture a majority of the state's delegates to the Democrats' National Nominating Commission. He captured 77% of Saturday's vote. Vermont Senator Bernie Sanders was still in the race when the Kansas party began mailing ballots at the end of March, but he suspended his campaign and endorsed Biden. Democratic leaders originally had planned to set up polling places across the state in addition to allowing mail balloting, but they scrapped plans for in-person voting at the end of March after a statewide stay-at-home order was issued. Many Democrats hoped a smooth primary would encourage greater reliance on mail balloting in Kansas's regular primary in August and its November general election. Sunday is World Press Freedom Day, and the global human rights group Amnesty International is calling on governments around the world to prioritize public health over their own egos. Amnesty says the backlash against journalists and others who criticize their government's handling of COVID-19 is hampering efforts to tackle the virus. The group also warned that censorship of vital information related to the pandemic has become a global crisis in and of itself. This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے مردوں کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والی بہت سی ہنرمند خواتین بھی بے روزگار ہو چکی ہیں۔ تاہم کچھ ادارے ایسے ہیں جو ان ہنرمند خواتین کو اس لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار ہونے سے بچانے کے لیے انہیں گھروں ہی میں کام کرنے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک ادارہ ہیلپنگ ہینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، جس کے پاکستان بھر میں خواتین کے لیے بہت سے اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ ان اسکلز سینٹرز پر کام کرنے والی خواتین کو وہ کس طرح بدلتی ہوئی صورتحال میں روزگار کا سلسلہ جاری رکھنے میں مدد دے رہا ہے، اس بارے میں سنتے ہیں ہری پور میں ایسے ہی ایک سینٹر کی پروگرام آفیسر شاہدہ سرور کی گفتگو، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے سینٹر نے اس سلسلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی۔ السلام علیکم شاہدہ سرور صاحبہ۔ شاہدہ سرور، کچھ بتائیے کہ آپ ہیلپنگ ہینڈ میں پروگرام آفیسر ہیں ہری پور میں، لیکن آپ نے کرونا کی اس وبا کے دوران جو خواتین گھروں میں بیٹھی تھیں، جن کو آپ مختلف ہنر سکھا رہی تھیں، ان کو کس طرح ایسے کام پر لگایا جس کی اس وقت بہت ضرورت تھی، بہت شارٹیج تھی فیس ماسک کی؟ تو کیسے ان بچیوں نے وہ فیس ماسک بنائے؟ 16,000 کے قریب آپ نے فیس ماسک تیار کروائے اور لوگوں میں اور مارکیٹ تک پہنچائے، تو بتائیے ہمارے سننے والوں کو۔
جی ضرور، جو ہیلپنگ ہینڈ کا اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ 15 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہا ہے اور ڈفرینٹ اسکلز پہ ہم کام کروا رہے ہیں۔ تو اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ اسکلز کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کروا رہا ہے، تاکہ وہ اپنی اسکلز کو یوٹیلائز کر کے اپنا سورس آف انکم جو ہے وہ اس سے حاصل کر سکیں اور اپنے لائیولی ہوڈ کو انہانس کر سکیں۔ تو یہ ہمارا روٹین کا چل رہا تھا۔ جب یہ سچویشن آئی تو جب سٹارٹ میں کچھ کیسز آئے تو ہم نے اپنے سینٹرز میں، ظاہر ہے ریگولر بچیاں ہمارے پاس سیکھنے آتی ہیں، اور ان میں سے پھر ہم سکھانے کے بعد ان میں سے جو بچیاں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ڈیزرونگ فیملیز سے ہیں، ان کے گروپ آرگنائز کر کے اور پھر ان سے ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ لنک کروا کے، تاکہ ان کو ریگولر انکم ملے۔ تو اس سچویشن میں جب آیا تو وہ آلریڈی ہماری جو ورکرز تھیں وہ کام کر رہی تھی اسکول بیگ پروڈکشن پہ اور ہائیجین کٹس پروڈکشن پہ، اور جو چلڈرن گارمنٹس ہیں ان کی پروڈکشن پہ کام کر رہی تھی۔ تو جب ہم نے اسٹارٹ میں اویئرنیس سیشن شروع کیے تو اسی کے دوران جو ہے یہ چھوٹی سی ٹریننگ دی کہ آپ جو ہے کیسے یہ فیس ماسک، کیونکہ جب ہم نے اویئرنیس سیشن دیے تو آپ کیسے اپنے فیس کو جو ہے وہ کور کریں، آپ نے کیسے کھانسنا ہے، کیسے ہاتھ دھونے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے ٹرینرز جو ہماری ہیں انہوں نے ساتھ جو ہے وہ ایک اسی طریقے سے کہ آپ کیسے فیس ماسک گھر میں بھی بنا سکتی ہیں تاکہ آپ جو ہے اپنی فیملی کو اور خود کو کیسے سیو کر سکتی ہیں۔ اسی سے پھر یہ آئیڈیا آیا کہ جب ظاہر ہے یہ سچویشن زیادہ ہوئی اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو مارکیٹ میں جو ہے وہ فیس ماسک کا شارٹیج ہو گیا۔ تو پھر ہماری بچیوں نے، ہمیں بھی لگا مارکیٹ میں شارٹیج ہو گیا ہے، اور ایون جو لوگ ہیں وہ خود بھی ہمارے سینٹر سے رابطہ کرنے لگے کہ ہمیں جو ہے فیس ماسک چاہیے، اگر آپ لوگ سٹچ کر سکیں۔ تو آلریڈی ظاہر ہے ہم ایک جب اسٹارٹ کا ٹائم تھا تو یہ ڈیورنگ اویئرنیس سیشن یہ چیز کروا بھی چکے تھے۔ تو اس سے پھر یہ ہوا کہ وہ پروڈکشن شروع ہوگی۔ ہم ویسے بھی جو ہمارا پروگرام ہے، ظاہر ہے سینٹرز میں ریگولر ٹریننگز اور وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو لیکن جو ہماری ورکرز ہیں جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے پروگرام کا، ہمارے ادارے کا یہ فوکس رہا کہ یہ جو خواتین ہیں جو یہ پروڈکٹ سے اپنا انکم ان کو آ رہی ہے اور گھر کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس صورت حال میں تو ان کے لیے ظاہر ہے ان کے حالات اور گڑبڑ ہو جائیں گے۔ تو اس میں پھر ہم نے جو پروڈکشن کا کام تھا وہ ان کو مٹیریل اکوپمنٹ گھروں میں پرووائڈ کیے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں، اور اسی طرح یہ فیس ماسک کا کام شروع ہوا، اور الحمدللہ ابھی تک 16,000 سے زیادہ جو ہے وہ فیس ماسک بچوں نے بنائے بھی ہیں اور گھروں میں بیٹھ کے، اور مارکیٹ میں جو ہیں وہ گئے بھی ہیں اور ان کو جو ہے اس سے فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو ہمارا ابھی بھی جو ہے کچھ پروڈکٹس پہ کام چل رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ये घरों पे रह के उनको जो काम है वो मिलता रहे, जब तक ये वैसे भी ये सिचुएशन ऐसी है कि ये काम भी रुक गया तो हालात और खराब हो जाएंगे फैमिली के। तो अभी भी हमारा जो है फेस मास्क के साथ साथ हाइजीन किट और स्कूल बैग जो है वो प्रोडक्शन, वो भी हमने मटेरियल और इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह घरों में अपना काम कर रही है।
तो पहले ये सेंटर्स में आकर ये काम किया करती थी आपके?
जी, पहले हमारे सेंटर्स में जा रहे हैं, वहां पे सीख रही हैं और फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया कि वो ग्रुप हम उन जो बहुत ज्यादा हमारे जरूरतमंद घराने उनको हम जो है वो ग्रुप की सूरत में ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उनको मजीद जो है ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि वो उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की जो है वो बेहतर हो जाए और फिर उनको मार्केट के साथ लिंक करते हैं हम लोग और ऑर्डर्स पे वो जो है वो काम करती हैं। वो अपने घरों पे भी कर रही होती हैं और हमारे सेंटर्स में भी आके कर रही होती हैं।
तो इस वक्त आपने एक सबब पैदा किया उनके रोजगार का कि वो अगर घर में बैठी हैं तो काम रुके ना, बल्कि उनका रोजगार भी चलता रहे। और एक बड़ी अहम जरूरत की चीज जो फेस मास्क थे और हाइजीन किट्स थी जिनकी बड़ी शॉर्टेज हो रही है इस वक्त, वो भी आपने इन बच्चियों से तैयार करवाकर मार्केट तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाई, बड़ी खिदमत की बात है। अगर कोई शायदा सरवर साहबा, अगर इस वक्त जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो चाहें कि आपकी कितनी बच्चियां हैं जो ये काम कर रही हैं, कितनी खवातीन हैं आपकी जो ट्रेंड है मास्क बनाने में?
जो हमारे अभी मैंने जैसे बताया हम 15 डिस्ट्रिक्ट में हैं तो इस वक्त जो है हमारे पास जो रेगुलर जो वर्कर्स हैं वो मोर देन 300 to 400 हैं।
अच्छा, तो और इसके अलावा दूसरी भी हैं जो कि आर्जी तौर पर भी वाबस्ता थी आपके साथ?
जी, जो उस जिस टाइम हमारे सेंटर्स क्लोज हुए जो हमारे उस वक्त कोर्सेज जो मैंने बताया जो कोर्सेज हमारे रेगुलर स्टिचिंग के होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं, ब्यूटिशियन के हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं, तो उस वक्त जो है हमारे पास जो एनरोलमेंट की सेंटर्स में सेंटर्स ज़्यादा उस सिचुएशन में क्लोज होने से पहले वो जो है वो 360 से ज्यादा थी।
तो इस वक्त वो जो 360 या 400 जो खवातीन वर्कर्स थी जिनको आपने ट्रेन किया था, वो सब इस वक्त मास्क बना रही हैं या हाइजीन किट्स बना रही हैं अपने घरों में बैठकर, और सामान आपको उनके घर तक पहुंचा देती हैं जो जिससे वो बना सकें वो?
जी, एक्चुअली आर सेंटर में जितनी भी हमारी वर्कर्स हैं वो सराउंडिंग एरिया की हैं, ठीक है, और जाहिर हमने ग्रुप ऑर्गेनाइज किए हुए हैं वहां पे हमारा पूरा सेटअप है, हमारे स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, ठीक है, तो वहां से उन्हें जो है मटेरियल कटिंग होके साथ जो है जो उनको इक्विपमेंट चाहिए जो मटेरियल स्टिच करने के लिए चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं।
तो क्योंकि वो उसी एरिया में हैं तो वो जल्दी से उन तक पहुंच भी जाता है और उनसे ले भी लिया जाता है, और फिर जहां जहां उसकी जरूरत होती है वहां आप लोग पहुंचा देते हैं।
जी, बिल्कुल।
तो अगर जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त, अगर वो चाहें कि आपसे राबता करें और इन बच्चियों से मास्क बनवाएं, फेस मास्क बनवाएं या हाइजीन किट्स बनाएं, तो कोई आप कोई एड्रेस देना चाहेंगी तो बताइए।
जी, हमारा ऑफिस का एड्रेस भी है हेल्पिंग हैंड का और मेरा फोन नंबर भी है और मैं आपको अपना ईमेल भी शेयर कर देती हूँ और अपना ऑफिस का एड्रेस भी शेयर कर देती हूँ तो वो आप कांटेक्ट कर सकते।
तो बिल्कुल, और अगर कोई चाहे, इंडिविजुअल भी चाहे या कोई इदारा भी चाहे कि वो फेस मास्क बनवाए इन खवातीन से जिनको ट्रेन कर दिया इन्होंने शायद असरवर के सेंटर्स ने, और ये सेंटर सिर्फ आपके सिर्फ हरिपुर में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हैं ये सेंटर्स, तो और वहाँ की खवातीन भी जरूर।
ये हमारे जी, देखिए हेल्पिंग हैंड जो है वो जिन जिन एरियाज में काम कर रहा है वहां पे हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो काम कर रहे हैं, सिर्फ ये हमारा एक प्रोग्राम नहीं है। हेल्पिंग हैंड जो है इस वक्त 12 से ज्यादा प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं, उसमें स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी प्रोग्राम है, उसमें जो है हमारा इमरजेंसी का है, हेल्थ का है, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं जिन एरियाज को हेल्पिंग हैंड ने अडॉप्ट किया हुआ है वहां पे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है ये हमारे सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी फैमिलीज भी हैं, वहां पे ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम भी काम कर रहे हैं, तो ऑर्फन जो विडो हेडेड हाउस होल्ड है वो भी है, उनको भी हम जो है वो ट्रेन कर रहे होते हैं, जो विडो खवातीन हैं, जो ऑर्फन बड़ी बच्चियां हैं, जो CWDs के माए हैं और उनको, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो इंटीग्रेटेड अदारा जो है उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं।
तो इसका मतलब है कि अगर कोई चाहे तो आपके इदारे से राबता करके फेस मास्क और ये जो हाइजीन किट्स आप लोग तैयार कर रहे हैं, ज़ाहिर सस्ती मार्केट से कम कीमत पर ही आप लोग ये फराहम कर रहे होंगे, तो वो राबता कर सकता है। तो
जी
आप
जी जरूर
बिल्कुल, तो ये वो काम है जो कि आपके स्किल्स सेंटर्स जो हैं वो कर रहे हैं इस दौरान, जबकि कोरोना की वबा ने सबको अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन घरों में बंद जो खवातीन हैं उनका रोजगार नहीं खत्म करने नहीं होने दिया आप लोगों ने, उनका रोजगार भी चलता रहा और एक बड़ी अहम जरूरत की चीज भी आप मार्केट में लोगों तक पहुंचा रही हैं। बेहद शुक्रिया आपका शायदा सरवर साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।
जी बिल्कुल, हमारी जैसे मैंने बताया कि हर जो हमारी जो जो एरियाज हैं वहाँ पे हमारी टीम्स हैं, हमारा रीजनल पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रीजनल मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, आगे प्रोग्राम की टीम है, तो ये सारी टीम जो है हमारी इस वक्त जो है वो फील्ड लेवल पे काम कर रही है, उसमें हमारी खवातीन जो बहने हैं वो भी हैं, हमारे जो मर्द भाई हैं वो भी हैं, तो ये सारा एक टीम वर्क है, तो इसमें सब लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व है, वो अवेयरनेस में भी इन्वॉल्व है, वो जो है इवन लोगों को ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस की भी जो है वो सूरत हाल, तो वो उनको जो है वो मोबिलाइज भी कर रहे होते हैं, समझा भी रहे होते हैं, तो क्योंकि हमारा तो रेगुलर काम है, ये हमारी टीम जो है ये तो रेगुलर फील्ड में होती है और रेगुलर जो हमारी एक्टिविटीज और चीजें चल रही होती हैं।
ठीक है, लेकिन शायदा मुझे सवाल करने दीजिए शायदा सर साहब, एक जो मुनफरिद बात आपके इदारे की है वो ये कि इसमें इस वक्त जबकि कोरोना की वजह से लोग मर्द भी अपने घरों में बंद हैं, आपके इदारे की खवातीन भी घर घर जाकर राशन तकसीम कर रही हैं, ऐसा कैसे मुमकिन हो रहा है?
ये एक अल्लाह की तरफ से और क्या कहते हैं एक जज्बा है, हम जो है इस वक्त भी और नॉर्मल हालात में भी ये जो जॉब है इसको ऐसा जॉब नहीं ले रहे होते, इसको एक जो है अल्लाह की रजा के लिए और एक जज्बे से काम हो रहा होता है। आप देखिए जब हम रेगुलर भी अपने कम्युनिटी में हाउस होल्ड के साथ मिल रहे होते हैं, के साथ मिल रहे होते हैं, अपनी जो बहने हैं विडो हैं उनके साथ, हमारे ऑर्फन बच्चे हैं CW, तो वो ऐसा ही है जैसे हमारी फैमिली है, तो अब इस सिचुएशन में आप खुद ये सोच सकती हैं कि आप अपनी फैमिली को जो जिनको जिनके साथ आप ऐसे अटैच हैं कि वो आप ही की बच्चे हैं, आप ही की बहने हैं, तो उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता इस सिचुएशन में जो कि मजीद वल्नरेबिलिटी में चले गए, तो ये एक टीम है, ये जाहिर है पूरा एक ट्रेन है हम लोग इसी तरह से और एक जज्बा है, तो हम रेगुलर भी जो है ये काम कर रहे होते हैं, तो जब इमरजेंसी आती है तो उसमें वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जाहिर है ज्यादा फील करते हैं कि जरूरत है इन सबको हमारी।
तो आप इस वक्त जाती हैं लोगों के घरों में, भारी भारी राशन उठाकर दरवाजा बजाकर उनके घर तक पहुंचा रही हैं जिनको उसकी जरूरत है, खासतौर पर यतीमों को और जो माजूर हैं और जो वल्नरेबल हैं। बहुत शुक्रिया शायदा सरवर साहिबा, आप मिसालें कायम कर रही हैं लोगों के लिए कि किस तरह जब कोई परेशानी का वक्त आए, जब कोई हंगामी सूरत हाल हो, तो किस तरह अपने आप को भी सही रखता है, सेहतमंद रखा जा सकता है और दूसरों की मदद भी करने का जो मौका है उसको हाथ से नहीं जाने दिया जाना चाहिए। बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। जी, ये थी हरिपुर में हेल्पिंग हैंड USA के तहत चलने वाले स्किल्स डेवलपमेंट के एक मरकज की प्रोग्राम ऑफिसर शायदा सरवर, जो बता रही थी कि किस तरह उनका इदारा हुनरमंद खवातीन को फेस मास्क तैयार करने का काम फराहम करके न सिर्फ मार्केट में सस्ते दामों फराहम कर रहा है बल्कि इन खवातीन को कोरोना से मुकाबले में अपना हिस्सा डालने का मौका भी दे रहा है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील. आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम. अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हेल्पिंग हैंड की एक वर्कर जिनका नाम है सोबिया मोहम्मद याकूब. मीरपुर खास में इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं. और कोरोना की इस वबा के दौरान पहले तो वो लोग कुछ और स्किल्स डेवलपमेंट के काम किया करती थी और अब कोरोना की इस वबा के दौरान उनका जो फोकस है थोड़ा सा बदल गया है. तो इनसे पूछते हैं कि ये कोरोना की वबा से पहले क्या काम कर रही थी और अब इस दौरान ये क्या ऐसा काम कर रही हैं जो इनके लिए भी फायदा मंद है और जो दूसरी वर्कर्स हैं जो इनके साथ काम करती हैं उनके लिए भी फायदा मंद है. अस्सलाम वालेकुम सोबिया मोहम्मद याकूब साहिबा.
जी वालेकुम अस्सलाम.
सोबिया बताइए कि आप हेल्पिंग हैंड में 2014 से काम कर रही हैं तो क्या काम करती हैं आप, उनकी मुलाजमत करती हैं या उनकी वैसे ही वर्कर हैं?
जी मैं हेल्पिंग हैंड में बाकायदा एम्प्लॉय हूँ और 2014 से मैंने हेल्पिंग हैंड को ज्वाइन किया था और मुझे 6 साल हो गए हेल्पिंग हैंड के साथ काम करते हुए. हम लोग हेल्पिंग हैंड के स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करते हैं और हमारा यहाँ मीरपुर खास में स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे हम खवातीन और बच्चियों को जो है वो स्किल्स सिखाते हैं. सिलाई कढ़ाई का हुनर भी है और इसके अलावा हमारा बैग यूनिट है और मैं जो है बैग यूनिट की इंचार्ज हूँ. और यहाँ पे हम उन बेरोजगार खवातीन को, उन बेवा औरतों को और यतीम बच्चियों को खास तौर पे जो है वो स्कूल बैग बनाने का हुनर सिखाते हैं ताकि वो मुआशरे में बाइज्जत तरीके से जो है अपना रोजगार कमा सकें और अपने पैरों पे खड़ी हो सकें.
तो ये काम तो था, अब एकदम से कोरोना आ गया तो अब बैग अभी तो नहीं बन रहे.
मैम फिर हम लोगों ने जो है ये डिसाइड किया, हमारे हेल्पिंग हैंड ने भी और हम लोगों ने भी, कि हम लोग यही काम जो है अपने घरों पे शिफ्ट करें, अपनी वर्कर्स को घरों पे शिफ्ट करें. तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल और तमाम मशीन्स जो है वो अपने अपने घरों पे शिफ्ट की वर्कर्स के और अब हम लोग जो है अपने घरों पे अलग अलग काम कर रही है सारी वर्कर्स.
तो क्या काम कर रही है इस वक्त?
इस वक्त जो है हम हेल्पिंग हैंड के ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम और CWDP के प्रोग्राम के लिए हेल्थ हाइजीन के जो पर्सनल हेल्थ हाइजीन किट्स होती हैं चिल्ड्रंस की वो बना रहे हैं.
यानी किट्स बना रही हैं कि उनके बैग्स बना रही हैं किट्स के, हाइजीन किट्स?
मैम बैग है वो हाइजीन किट्स, उस पे जो है वो मोनोग्राम हम लोगों ने प्रिंट करवाया हुआ है और उससे जो है ना वो बैग्स की शेप में हम बना रहे हैं.
तो अब तक कितने बैग्स आप ये बना चुकी हैं?
मैम ये हमारा 1500 का ऑर्डर है मीरपुर खास सेंटर का, उसमें से हम जो है वो 200 पूरे कर चुके हैं 2 हफ्तों में और बाकी हम काम कर रहे हैं इसमें.
तो ये जो अब सिलसिला चल पड़ा तो आप ये समझती हैं कि जो खवातीन घरों में बैठकर पहले दूसरे सिलाई कढ़ाई किया करती थी अब वो बेरोजगार नहीं हुई?
जी बिल्कुल, वो बेरोजगार नहीं है बल्कि वो अब अपना काम जो है घर पे उसी सहूलत के साथ कर रही हैं जिस तरह से वो सेंटर आके किया करती थी. और इस काम से वो अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने 4,000 से 5,000 रुपए जो है वो अर्निंग करती हैं हमारे इस काम से.
तो बड़ी बात, बहुत अच्छा कि इस वक्त जबकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, खवातीन जो पहले काम किया करती थी सेंटर में जाकर वो अब घरों में बैठकर अपना रोजगार जो है वो जारी रखे हुए हैं और थोड़ा सा फोकस बदल गया है. पहले दूसरे स्कूल बैग्स बनाया करती थी, अब वो ये बैग्स बना रही हैं जो हाइजीन किट्स के काम आ रहे हैं. तो बहुत शुक्रिया आपका सोबिया मोहम्मद याकूब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. थैंक यू.
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील. आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हाजरा सिद्दीका से, चकवाल के मदीना टाउन में जो मरकज है हेल्पिंग हैंड का. स्किल्स सिखाने का उसकी इंचार्ज हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कोरोना की इस वबा के दौरान क्या ये सेंटर बंद हो गया, और अगर नहीं बंद हुआ तो इस वक्त ये सेंटर किस तरह काम कर रहा है?
जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे पहले जो था तो भी हमारे सेंटर में माशाल्लाह से प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही थी। हमारे सेंटर में एक तो हम लोग यूनिफॉर्म प्रोडक्शन का है, ये इसमें हम लोग यूनिफॉर्म तैयार करते हैं। दूसरा ये हमारा बैग्स का है, इसमें हम जो है बैग्स प्रोडक्शन उसका भी काम होता है। तो इससे पहले तो बहुत अच्छा हो ही रहा था, लेकिन इन दिनों जैसे कि तमाम दुनिया के हालात हैं तो इस लॉकडाउन के बावजूद भी हम लोग के सेंटर का काम जो है वो नहीं रुका। तो हम लोग हमारी वर्कर्स जो है वो होम बेस्ड काम कर रही है, तो हम लोग जो है ट्रेनर्स या हम लोग उनको कटिंग करके उन लोगों के हम लोग घरों तक उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक तो इसका ये फायदा है कि उन लोगों को एक अच्छा रोजगार इन दिनों में, तकरीबन हर इंसान को ही जरूरत है कि कोई वो उनका नहीं है रोजगार, तो एक तो ये भी उनकी हेल्प हो रही है। दूसरा हमारे अपने जो बच्चे हैं हमने उनके लिए अभी हमने अपने दो क्लस्टर्स के लिए उनके लिए ईद ड्रेस तैयार किए हैं माशाल्लाह से, वो भी हमारे 400 तैयार हुए हैं। उसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं ओएसटी के बच्चे जो है उनका भी यूनिफॉर्म हमने 4 क्लस्टर को हमने वो दिया है। तो और इसके अलावा हमारी मास्क पे वर्किंग हो रही है जो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल है।
कितने कितने मास्क आपने बनवाए और किस तरह मजीद आप बनवाने के लिए काम कर रही हैं फेस मास्क?
हाँ जी, ये फेस मास्क है। हाँ जी, ये तकरीबन हमारे पास इस वक्त तक जो आज तक रिपोर्ट अगर करूँ तो तकरीबन ये 15,500 तक के हमारे मास्क तैयार हुए हैं, जिसमें से कुछ हम लोगों ने डोनेट भी किए हैं, कुछ हमारे दूसरे इलाकों में हम लोगों ने भेजे हैं। इसमें से हमारी लेबर जो है वो माशाल्लाह एक अच्छी लेबर वो मतलब की उसमें से वो अर्न कर रही है, और मतलब एक तो उनका ये रोजगार भी लग जाता है। हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग एक दिन में उसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये है कि हम सब वर्कर्स को नहीं बुला सकते, तो हम उनको बारी बारी जैसे उनके लिए पॉसिबल हो तो वो आके कटिंग एक एक बंदा करके ले लेता है, या हम लोग खुद उनके घरों तक पहुंचा देते हैं। तो माशाल्लाह से ये काफी अच्छा काम रहा है हमारा।
तो कितने वर्कर्स हैं आपके सेंटर में?
अगर सिर्फ इसका देखा जाए मास्क का, तो इसमें हमारे साथ ज्यादा वर्कर नहीं है, हमारे साथ 5-6 वर्कर होंगे जो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिजर्विंग है लेडीज। जिस तरह उसमें कुछ विडोज आ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके मतलब फाइनेंशियल ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम लोग एक इस इदारे में रहते हुए हम इतना ही कर सकते हैं कि उनकी एक अच्छी हेल्प कर देते हैं, उनके लिए हम लोग काम प्रोवाइड करके।
लेकिन ये जो आपने बात की 16,000,
लोग खुश हैं,
आपने बात की कि 16,000 बने ये जो मास्क फेस मास्क हैं, तो ये सिर्फ आपके सेंटर ने बनाए या चकवाल में जो और सेंटर्स हैं उन सब की मुश्तरका ये तादाद है?
नहीं नहीं ये इस वक्त एक ही हमारा सेंटर ही बनाया है, जो चकवाल है ना, जो एसडीसी चकवाल है, सिर्फ उसमें बन रहे हैं, और इसके अलावा अभी कोई सेंटर नहीं बना रहा। तो ये चकवाल में सिर्फ हमारी ही काविश है।
लेकिन आप कह रही हैं कि चकवाल में तो आपके पास 4-5 खवातीन है, तो सिर्फ 4-5 खवातीन 15,000 उन्होंने बना लिए फेस मास्क?
ये मास्क जो है ये तकरीबन पाकिस्तान के काफी इलाकों में, पहले तो हमारा ये ऑर्डर आया था, ये हेड ऑफिस का ऑर्डर था, जो 10,000 हमने वहां पे भेजे हैं ना इस्लामाबाद। उसके बाद उन लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे भिजवाए, हम लोगों ने जो अपने जो डोनेट किए थे वो हम लोगों ने कुछ हॉस्पिटल्स में डोनेट किए, कुछ आस पास जो गाँव है वहां पे हम लोगों ने मतलब की हम लोग जो हमारी लोकल मार्केट है वहां पे भी हम लोगों ने सेल किए हैं। और इसकी वर्किंग जो है ये हमने ये लॉकडाउन के तकरीबन ये दो तीन दिन बाद हमने स्टार्ट कर ली थी, और ये माशाल्लाह अभी तक इसकी वर्किंग हो रही है, जैसे जैसे हम लोगों को मिल रहे हैं इसके ऑर्डर्स तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाजरा सिद्दीका, आपने चकवाल के मदीना टाउन से अपने जो मरकज है स्किल डेवलपमेंट का, हेल्पिंग हैंड का, उसमें आप इंचार्ज हैं पूरे मरकज की, और इस वक्त जो बेरोजगार जिन खवातीन को खदशा था कि वो बेरोजगार हो जाएंगी उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम और हमने पहले भी इस प्रोग्राम में यस एक्सचेंज स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात करवाई और हमने उनके मसले का जिक्र किया कि किस तरह वो यहाँ पर अमेरिका में इस वक्त फंस चुके हैं कि उनकी फ़्लाइट्स का भी नहीं पता लग रहा कि कब उनकी फ़्लाइट्स उन्हें पाकिस्तान वापस लेकर जाएंगी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट की जो कि इस वक्त यहाँ अमेरिका में हैं, पढ़ने आई थी, इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हैं और जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हैं और इनका भी यही कहना है कि ये इंतज़ार में है कि इनको पाकिस्तान वापस की फ़्लाइट कब मिलेगी और बड़ी परेशान और बेयकीनी की कैफियत में है। ये इनसे आपकी बातचीत, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मायरा आसिफ।
वालेकुम सलाम।
मायरा आप बताइए कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट थीं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में, ठीक?
जी, हाँ जी।
तो आप किस स्कॉलरशिप के तहत यहाँ पर आई थीं और कितनी अभी तक आपकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, कितनी रह गई थी और फिर उसके बाद ये जो मसला पेश आया लॉकडाउन का, उसमें आप इस वक्त किन हालात का शिकार हैं?
मैं यूग्रेड स्कॉलरशिप की बेसिस पे यहाँ पे आई थी एक सेमेस्टर के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम पे और मैं हम लोग जनवरी फर्स्ट को बेसिकली यूएस आए थे और मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर हमारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी एंड तब से मैं और मेरे अलावा जो 100 के करीब और स्टूडेंट्स हैं एक्सचेंज स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जो हैं।
कितने अरसे का ये कोर्स था?
टेक्निकली ये डिफरेंट स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, अगर एक सेमेस्टर का कोर्स था
तो अब ये है कि आपको कुछ पता, आपने रابطہ किया एम्बेसी से, आपने रابطہ किया स्टेट डिपार्टमेंट से, कुछ वहां से भी कुछ मालूम हुआ कि क्या सूरत हाल होने वाली है?
IREX के नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो कि हमें यहाँ पे मैनेज कर रहा है, वो हमारी फ्लाइट्स को मैनेज कर रहे हैं, हमारे स्टाइपेंड्स को मैनेज कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी फ्लाइट्स देखें। जी, हमने उनसे रابطہ किया है और उन्होंने हमें यही बताया कि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो तो हमारे साथ बार बार कम्युनिकेशन में रहे, मगर उन्होंने यही बताया कि सिचुएशन ऐसी है कि वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और आगे से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ने आपकी फ्लाइट कैंसिल की है, जो हमें ये बताया गया उनकी तरफ से, हमें यह बयान मिला है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी आपकी फ्लाइट कैंसिल की है। तो उनसे ये अभी तक हमें पता है, इससे ज्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हम IREX के साथ बात करते हैं और IREX आगे बाकी डिपार्टमेंट से बात करते हैं। अभी पिछली फ्लाइट हमारी 28 को आई थिंक हमें कहा था, शायद हम 28 अप्रैल को हमारी फ्लाइट पहले स्केड्यूल हुई थी जो कैंसिल हो गई थी, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं अब कब फ्लाइट मिल सकती है।
तो इस दौरान जबकि अब आप यूनिवर्सिटी में अकेले आपको कमरे मिले हुए थे और आपके साथ और यहाँ इधर जॉर्ज मेसन में कितनी स्टूडेंट्स हैं?
मैं जिस बिल्डिंग में हूँ उस पूरी बिल्डिंग में आई थिंक 10 से 15 लोग हैं, मगर वो फैले हुए हैं और पूरे कैंप 50-60 लोग हैं और कैंपस काफी बड़ा है तो मुझे अंदाजा नहीं है क्योंकि मेरा ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, मैं अकेली हूँ पिछले 2 महीने से।
तो बड़ी सूरत हाल ख़राब है और परेशानी की बात है, लेकिन इंशाल्लाह ऐलान हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो जल्द ही कुछ फ्लाइट्स का बंदोबस्त कर रही हैं जो कि आप सब लोगों को, जो भी फंसे हुए हैं पाकिस्तानी, और इम्कान यही है कि स्टूडेंट्स को भी ज़ाहिर है वापस लेकर जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये मसला मुतल्लिका लोगों तक पहुँचाएँ और इस बारे में कोई जवाब लेकर आप तक पहुँचाएँ। आपने मायरा आसिफ हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। एक और स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं, इनका नाम है मुस्तफ़ा और इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ फंसे हुए हैं और इनकी फ्लाइट की क्या सूरत हाल है। मुस्तफ़ा आपका पूरा नाम क्या है?
अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा हुसैन मेरा नाम है और मैं पाकिस्तान में लाहौर में लम्स में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे कनेटिकट कॉलेज में कनेटिकट में आया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे सारे तकरीबन 70-80 तलबा और तलबात पहुँचे थे 2 जनवरी को, हम वाशिंगटन पहुँचे थे, उसके बाद हम लोग सब अपनी अपनी स्टेट्स में चले गए थे, वो स्टेट्स टेक्सास से लेके साउथ डकोटा से लेके, मिशिगन से लेके, अलबामा से लेके, पूरे मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में, हर स्टेट में हमारे तकरीबन दो दो तीन तीन बच्चे प्लेस्ड हैं। तो मार्च में जब ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम आया तो इन लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटीज बंद कर दी और हमें बोला कि आप लोग अपना सामान पैक करके आ जाएं क्योंकि आप लोगों की फ्लाइट्स होंगी। उसी उसमें मैं भी यहाँ न्यूयॉर्क सिटी आ गया कि हमारी फ्लाइट थी और मेरी यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैं अपना सामान लेके निकला तो उन्होंने बोल दिया कि अभी तो फ्लाइट्स पॉसिबल नहीं है। यह है, मैं आपको ये मार्च की बात बता रहा हूँ। उसके बाद हुआ ये कि मार्च के बाद 15 मार्च को उन्होंने हमें बताया, 15 दिन पहले हमें बता दिया उन्होंने कि आप लोग वापस जाने वाले हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 15 अप्रैल की हमारी फ्लाइट्स थी कि बोला था कि 15 अप्रैल को फ्लाइट्स है ना अरेंज कर दी है। फिर 15 के बाद वो कहानी डिले होके 21 को आ गई। 21 को हम सब रेडी हुए थे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उन्होंने 20 को बताया कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। मीन वाइज हम अपना सारा सामान लेके तैयार थे कि स्टैंड बाई पे किया हुआ था, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी, उस पर भी इस पर काफी इम्पैक्ट हो गया था। बहुत सारे लोगों की डाइनिंग हॉल्स बंद हो गए यूनिवर्सिटी के, वो खुद मतलब वो कर रहे। इस हवाले से हमारे साथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की जो एजेंसी आईरेक्स जो हमें यहाँ पे लेके आई है वो तो काफी कोऑपरेटिव है हमारे साथ। लेकिन हमारी जो चार्टर फ्लाइट फिर एक और 28 अप्रैल को भी थी जो उन्होंने 27 को कैंसिल कर दी कि नहीं हो सकती, और हम बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए। तो इस तरह कोई 4 दफा हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गया कि उन्होंने हमें मना कर दिया, और हम सब यहाँ पे अभी स्ट्रैंडेड, हमारे वीजा एक्सपायर हो रहे हैं और सब रमजान अपने घर में मनाना चाहते हैं। मतलब इवन सूडान से लेके घाना तक के जो बच्चे हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी से चले गए अपने अपने घर, और हम लोग अभी पाकिस्तान से जो है वो यहीं पर महसूर होके रह गए हैं।
तो ताज़ा तरीन आपको आपके जो डिपार्टमेंट ने जो आपको लेकर आया उसने क्या इत्तला दी आपको?
उसने हमें यही इत्तला दी, हमने जब हमारे साथ ये चौथी दफा हुआ कि हम एक दिन फ्लाइट से कुछ घंटों पहले जब हमें बताया गया कि हमारी फ्लाइट नहीं हो रही और हमें भी वापस उठना पड़ेगा, तो हमने जाहिर है काफी बच्चे थे, काफी लोगों ने वो किया, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अलाउ नहीं की है अभी फ्लाइट, हमारी तरफ से तो सब कुछ रेडी है और हमारा जो प्राइवेट चार्टर प्लेन था वो जाने के लिए तैयार था। तो उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की तरफ से परमिशन का इशू है।
अच्छा, तो अब फिर हम कोशिश करेंगे कि हम रابطہ करें किसी PIA के स्पोक्स पर्सन से, तो आपका हाल हम तक पहुंचाते हैं कि क्या सूरत हाल है। और इस दौरान आप बताइए कि फिर क्या मसाइल, क्या 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 पेश आ रहे हैं, कैसे गुजर रही है और कैसे इस लॉकडाउन के अंदर आप गुजारा कर रहे हैं?
अभी ये तो मैं तो अपने एक रिलेटिव के घर पे यहाँ यूनिवर्सिटी आ गया था क्योंकि उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी बंद कर दी थी, मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से कोई 3 घंटे दूर है। तो जो मुख्तलिफ तलबा तलबात अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में, कोई अपनी होस्ट फैमिली के घर पर रुके हुए और कुछ लोग अपने क्या कहते हैं तो यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में उनको एक कमरा खोल के दिया हुआ है, मतलब सिर्फ वही लोग रह रहे हैं, इस तरह मतलब यहाँ पे सिचुएशन है। और ऐसा मतलब यही है कि हम जैसे मैं यहाँ न्यूयॉर्क में बिल्कुल मतलब कोई महीने से बाहर नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे हालात इतने खराब हैं और मतलब अभी इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना हमने, तो उस हिसाब से हम बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल रहे। तो काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि दूसरी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, हमारी पढ़ाई भी चल रही है, उस पर उन्होंने हमें स्टैंड बाय पे रखा, हमारा सामान पैक्ड है, मतलब हम किसी भी वक्त फ्लाई करने के लिए रेडी हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि फ्लाइट से कुछ घंटों पहले या एक दिन पहले वो बताते हैं कि पॉसिबल फ्लाइट नहीं है, और सिर्फ मतलब 2 दिन पहले तो हमारी पूरी तैयारी होती है, बता रहे होते हैं कि आपने ये गाइडलाइंस देनी, हमारे टिकट्स बुक होते हैं, फिर वो अचानक से कैंसिल कर देते हैं।
तो आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बंद है, तो आपके खाने पीने का क्या बंदोबस्त हो रहा है?
मैंने तो आपको बताया, मैं जैसे अपने यहाँ रिलेटिव के घर पे रह रहा हूँ तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दूसरे स्टेट्स में डाइनिंग हॉल्स बंद हो गए तो बच्चे खुद जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी वो ऐसे प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन ये है कि काफी प्रॉब्लम्स में बच्चे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है यहाँ पे, हमारे वीजा मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सपायर हो रहे हैं अभी मई में ही।
तो फिर वीजे के मसाइल शुरू हो जाएंगे अगर जल्दी आपकी परवाज ना मिली आपको तो।
यकीनन यही होगा, मतलब 20th मई को हमारे साथ के वीजा एक्सपायर हो रहे हैं।
अच्छा, तो मुस्तफ़ा हुसैन, हम आपके इस परेशानी में आपके साथ हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल को जो मुतल्लिका हुकाम हैं वहाँ तक पहुँचाएँ और उनसे कोई जवाब लेकर आप तक पहुँचाएँ। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم نے ابھی گفتگو کی مصطفیٰ حسین سے جو یہاں انڈر گریڈ کرنے آئے تھے اور ایک اس وقت پھنس گئے ہیں اور پاکستان واپس جانے کے لیے فلائٹ کے منتظر ہیں اور بہت پریشان ہیں، بے یقینی کی کیفیت ہے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا، سامان آدھا بندھا ہوا ہے، کچھ کھلا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ مسائل تو ہیں ان لوگوں کے. ایسی انڈر گریڈ کی ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں زینب شاہد، جن کا تعلق ساہیوال سے ہے اور وہ نیو یارک کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں اس وقت ایک سیمسٹر کے لیے آئی ہوئی تھی اور یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ پروگرام کے تحت. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کن حالات میں ہیں اور ان کی پریشانی بھی ظاہر ہے باقی اسٹوڈنٹ جیسی ہی ہے، لیکن ان کی زبانی سنتے ہیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہے. السلام علیکم زینب شاہد صاحبہ.
وعلیکم السلام.
زینب بتائیے کیا حال ہے، اور یقیناً آپ بہت پریشان ہوں گی، تو کچھ بتائیے کہ اب تک آپ کو کیا معلومات ملی ہیں کہ آپ کب جا رہی ہیں، کوئی اپ ڈیٹ کیا جس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو یہاں بندوبست کرنا تھا واپسی کا؟
I'm from Pakistan and I'm an IELTS sponsor student. اور یہاں پہ میں نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں اس وقت فور سیمسٹر ایکسچینج. تو ہم نے جانا تھا لائک مئی میں، اور اپریل کے اسٹارٹ میں ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس منتھ جا رہے ہیں، اور کوئی چار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری ٹکٹس آئی ہیں اور پھر وہ لائک ڈیلے ہوتی جا رہی ہے فلائٹ، کہ ابھی ہم نہیں جا رہے. تو ابھی تو کیونکہ رمضان بھی ہے تو فیلنگ زیادہ آتی ہے نا گھر کی، کہ گھر ہوتے تو وہ ایک فیلنگ آتی ہے پراپر رمضان کی، تو وہ پھر ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ابھی ہم پورا رمضان یہیں پہ اسٹے کر رہے ہیں اور شاید عید تک یہاں اسٹے کریں کہ نہیں. تو یہی ریکویسٹ تھی پاکستانی گورنمنٹ سے کہ وہ ہمیں واپس پاکستان پہ لائے. اور ہاں
تو آپ کہاں رہ رہی ہیں اس وقت؟
میں یونیورسٹی کے ڈارمز میں رہ رہی ہوں.
اکیلی ہیں کیا، اور بھی اسٹوڈینٹس ہیں؟ اور بھی اسٹوڈینٹس ہیں آپ کے ساتھ؟
نہیں، اور اسٹوڈینٹس ایز سچ تو نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے الگ الگ سب کو سویٹ پرووائڈ کی ہے، تو کافی ڈسٹینس پہ لوگ رہتے ہیں، بٹ ایز سچ تو کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا بیکاز آف کرونا.
پھر آپ کے کیا کھانے پینے کا بندوبست یونیورسٹی کر رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے؟
یونیورسٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے ہمیں کھانا، لیکن ہم لوگ خود بھی گروسری کرتے ہیں تو کھانا وغیرہ ہم خود لے آتے ہیں،
خود پکاتی ہیں پھر.
ہاں جی، پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کھانا نہیں مل رہا اور وہ پراپر رونے دھونے والی سچویشن تھی، لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہوتا. تو میں گروسری لے کے آئی، مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا، لیکن اب پھر میں نے اس کو پراپر یوٹیوب وغیرہ اور اب ایڈجسٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ اب تھوڑا سا یقین کم ہو گیا کہ میں اس منتھ میں واپس جا رہی ہوں.
تو اب آپ نے رابطہ کر لیا اپنے ڈپارٹمنٹ سے جس نے آپ کو واپس لے کر جانا ہے؟
جی، آئرک سے ہمارا لائک کنیکشن ہے، تو انہوں نے وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری کب فلائٹس آنی ہے اور کب ہماری فلائٹس نہیں آ رہی، لائک ڈیلے ہو رہی ہیں. تو ان سے تو ہمارا لائک ان سے تو ہم کنیکٹڈ ہیں، تو آئی ہوپ کہ ہم لائک جلدی ہمیں ٹکٹ ریسیو اور ہم پاکستان واپس ہیں.
تو زینب شاہد، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو متعلقہ حکام ہیں پی آئی اے کے ایویشن ڈپارٹمنٹ کے، ان سے رابطہ کر کے آپ کی صورتحال بتائیں. ہم نے یس ایکسچینج اسٹوڈینٹس کا ذکر کیا تھا، تو انہوں نے جواب میں ہمیں یہی کہا تھا کہ 12 فلائٹس اب وہ چلا رہے ہیں پاکستان سے چلیں گی اسپیشل، تو اس میں ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو بھی واپس لے جایا جائے گا تو مئی کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو واپس لے کر جایا جائے گا، یعنی جتنے بھی یہاں پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی ان میں سے کسی فلائٹ میں بیٹھ کر پاکستان واپس جا رہی ہوں گی.
تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جب بھی پھنسے ہوئے پاکستانی کہتے ہیں تو وہ ہمیں لسٹ سے نکال دیتے ہیں، نہیں یہ پھنسے ہوئے نہیں، بہت چل ماحول میں، تو ان کو وہیں پہ رہنے دو.
کیا کہوں کیا کروں آپ کے لیے،
دس شڈ بی دا لائک دا بیسٹ پارٹ آف مائی لائف. اس کے لیے میں نے کوئی 1.5 سال محنت کی تھی کہ میں اس انڈر گریڈ سیمسٹر ایکسچینج میں سلیکٹ ہوں گی اور میں یو ایس اے جاؤں گی فار ون سیمسٹر. اور ہوتا ہے نا تھوڑا سا یو ایس اے آپ گھومو گے اور یہ جو سارا آپ کا ایکسپیرینس ہے اسے یوٹیلائز کرو گے، انجوائے کرو گے، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے سب کچھ اتنا خراب ہو گیا کہ آپ صرف ایک روم میں رہ گئے. اب تو یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ میں واقعی یو ایس اے میں ہوں، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی کہ میں نے یو ایس اے جانا ہے. تو اب تو بہت ڈفرینٹ سچویشن ہے.
तो वैसे जब पिछले कुछ महीनों में आपने यूएस देखा?
मैं वाशिंगटन डीसी तो हमने जाना था अपनी एंट्री वर्कशॉप वर्कशॉप की थी, उसके बाद मैं कनेटिकेट गई थी और न्यूयॉर्क सिटी गई थी। मुझे कैलिफोर्निया जाना था लेकिन वो मेरी स्प्रिंग ब्रेक में जाना था, और स्प्रिंग ब्रेक जो थी वो बिल्कुल कोरोना के टाइम पे आई, तो वो सारा डिसमिस हो गया, तब नहीं जा रही।
घर वालों से बात तो हो रही है ना, इंटरनेट तो है ना?
हाँ बिल्कुल, बात हो जाती है मेरे घर वालों से, लेकिन टाइम डिफरेंस है थोड़ा सा, तो जब मैं सो रही होती हूँ तो वो लोग जाग रहे होते हैं, और जब वो जाग रहे होते हैं तो मैं सो जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्लैश आता है, लेकिन बाकी तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब तो बहुत स्टेबल हो गई। अब मैंने खुद से एक्सेप्ट कर लिया था कि अभी थोड़ी देर इधर हूँ तो इसको एंजॉय करती हूँ और इसको मेमोरेबल बनाती हूँ, ताकि बाद में मुझे याद रहेगी कि मैं कभी गई थी।
तो कैसे बना रही है मेमोरेबल?
मैं सुबह सुबह लाइक लेक के पास वॉक करने चल जाती हूँ, और थोड़ा सा खाना बना के, एंड मेरी एक फ्रेंड है जो रहती है यहाँ पे, जिनसे पहले मेरी बहुत दोस्ती नहीं थी, कि ना मुझे फील हुआ कि नहीं यहाँ पे मेरा कोई दोस्त होना चाहिए जिसके लिए मुझे याद रहे कि मुझे वापस यूएस आना है जब हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो यस ऐसे।
तो कोई म्यूजिक से शौक है आपको, गाना वाना गाती हैं?
नहीं मैं रेडियो करती थी पहले, जब ये कोरोना नहीं था तो मैं खुद से बातें करके टाइम गुजारती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना, लेकिन बहुत टाइम तक यहाँ पे कोई आपको सुनने वाला नहीं होता ना, तो मैं खुद से बोल रही होती हूँ ताकि मेरे अपने कान मुझे सुन रहे हो, तो आदत भी है और शौक भी है। तो लेकिन म्यूजिक थोड़ा बहुत ले, कभी कभी बहुत ज्यादा नहीं।
कोई कोई गाना गा के सुनाइए इस वक्त हमारे सुनने वालों को, कोई जो आपके दिल का कोई बोझ हल्का हो, गाइए।
मैं अपनी नज़्म सुना सकती हूँ,
सुनाइए।
गाने नहीं गा सकती।
आपने लिखी है? आप शायरा भी
हैं? हाँ मैंने लिखी है, मैं शायरा नहीं हूँ लेकिन कभी कभी होता है, कभी कभी लिख लेती हूँ।
अच्छा, तो क्या कोरोना है उसमें नज़्म पे?
नहीं वो जादू की दुनिया।
अच्छा,
कि हमें सब इस एज की बहुत सी लड़कियां फैंटेसी की वर्ल्ड में रहती है ना, लेकिन ये सबकी फैंटेसी पे है। लेकिन नज़्म का नाम है शहर नगरी जादू की दुनिया।
शहर नगरी, अच्छा बहुत अच्छा टाइटल है भाई। हाँ चलिए ज़ैनब शाहिद शुरू कीजिए अपनी नज़्म।
ये रंगों की दुनिया और खेल तमाशे, ये रंगों की दुनिया और खेल तमाशे, हर आंख में ख्वाब हर हाथ दुआ में, मुस्कुराते लबों पे हैं खिलते गुलाब, फिजा में मस्ती फकत नी में शराब, इस शहर की नगरी में हर किरदार है फानी, कहीं मासूम सा बचपन कहीं बेजोड़ जवानी, हाथों में खिलौना हर शह है सुहानी, यहाँ फर्द दास्तां है फकत हाथों में पानी, यूं शान बड़ी करके कहलाते हैं अकबर, खुद आप हथेली पर रखते हैं मुकद्दर, इनको तो नहीं याद दस्तूर जमाना, मट्टी तो मट्टी में मिल जाती है अक्सर, ये तस्वीरें अक्सर तमाशा है क्यों, हम हों कहीं भी खुश हों या गम की, एक खौफ सदा रहता है हम में भी कहीं, कि देखो करती है जिंदगी वफा कि नहीं। थैंक यू सो मच। अब
बहुत अच्छा।
कुछ टाइम पहले तक तो मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, उसके बाद मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरी बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं जो पेंडिंग है, और अगर मैं वो करना शुरू करूंगी तो मैं बिल्कुल डिप्रेस नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा डिप्रेस होने का। और फिर एक कासिम अली शाह हैं जो मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, तो मैं उनको सुनना शुरू हो गई कि किस तरह से हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, और जितनी वो बुरी बातें बता रहे थे कि इंसान नेगेटिव सोचता है या फिर वो खुद से डिप्रेस होता है या वो चिढ़ना शुरू कर देता है, तो ह्यूमन बिहेवियर में कितने बैड पॉइंट्स हैं, तो मुझे लग रहा था कि सारी बुरी चीजें मुझमें आ गई इन सारे टाइम में, ये जो कोरोना का जितना भी पीरियड था, क्योंकि हम ज्यादा सोच रहे होते हैं। तो जब मैंने उनको सुनना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, लाइफ बहुत अच्छी है अगर हम सोचते हैं। और उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की थी कि जब आप एक काली ऐनक लगाते हो ना, तो उस काली ऐनक की वजह से आपको सब काला नजर आता है, जबकि कुछ भी काला होता नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी काली ऐनक उतारी और मैंने अच्छा अच्छा देखना शुरू किया, अपने असाइनमेंट्स कवर करना शुरू किया, उनको स्टार्ट किया, और जो काम किया उसको अच्छे तरीके से किया, तो थोड़ी सी पॉजिटिव फीलिंग आई जब, तो फिर थोड़ा सा सब्र आ गया कि हाँ ठीक है, कुछ देर गुजारा जा सकता है यहाँ।
और अब तो बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, बल्कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा अवेल करने की कोशिश कीजिए। जिस जगह आप आने की इतनी ख्वाहिशमंद थी, अब जितना वक्त है उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, हिम्मत कर लीजिए।
बिल्कुल ऐसे ही। अब तो मुझे लगता ही नहीं है कि बहुत डिप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन वो थोड़ी सी फीलिंग है कि घर वाले के घर जाना चाहिए था, अब शायद टाइम है कि घर जाना है वापस।
बहुत शुक्रिया ज़ैनब शाहिद, आपने इतनी अच्छी अच्छी इतनी उदासी में भी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की और बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की आपने। और हमें यकीन है कि इस वक्त अगर आपके घर वाले आपको सुन रहे हैं तो उनका भी हौसला बढ़ेगा कि हमारी बेटी माशाल्लाह अब ठीक काम कर रही है और
थैंक यू सो मच।
थोड़े से दिन और गुजार
थैंक
लेगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और ज़ैनब
यू सो
शाहिद
मच फॉर हैविंग मी।
और ज़ैनब शाहिद, ये आपसे
थैंक
अभी मैं बराह रास्त बात कर रही हूँ, अभी बेशक हम ऑन एयर हैं आपसे, हम प्रोग्राम आपसे मैं इस इंटरव्यू के बाद आप जब चाहें मुझसे बात कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। आपने आप अकेली ना
मुझे सिर्फ
बोलिए।
एक ही मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एक ही काम आता है, वो है सिर्फ बोलना और बातें करना। तो मैं जरूर आपको कॉल करूंगी और आप फिर खुद तंग आएंगी कि मैं आपको रोज क्यों कॉल
नहीं,
करती
मैं आपसे बिल्कुल तंग नहीं आऊंगी, जब तक आप हैं आप मुझे रोजाना कॉल कीजिए, खासतौर पर जब आप फारिग हो जाएं रोजे के बाद तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। आप अकेली बिल्कुल ना बोलिए, ये हमें अच्छा नहीं लगा कि आप अकेली बोल रही हैं, अपने आप से बोल रही हैं, हमारे होते हुए
नहीं, मुझे लग रहा है
आपकी।
कि काफी हेल्दी होता है खुद से बोलना, बातें करना और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद से शेयर करना, क्योंकि आपके अलावा इन द एंड आपके साथ कोई भी नहीं रहता है। तो होता है ना कि आप खुद को लाइक मोटिवेट करो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक बहुत ये वक्त भी गुजर जाएगा और एक बहुत अच्छा वक्त आएगा और ईद आएगी और हम पाकिस्तान होंगे और हम पाकिस्तान में ईद मनाएंगे एंड होपफुली कोरोना वहां पे खत्म हो जाए और लोग नॉर्मली जिंदगी गुजारना शुरू करें और वैसे ही ईद जैसे वो पहले मनाते थे वैसे ही मनाएं। तो आई होप कैसा हो जाए।
इंशाल्लाह ऐसा होगा, हौसला रखें जैनब शाहिद। हम जल्दी आपको PIA के हुकाम से, एविएशन डिपार्टमेंट से आपकी कहानी नशर करेंगे और वो भी सुनेंगे, तो यकीनन आपको जो सही सही इसका जवाब है वो हम आपको लेकर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी
थैंक यू
मच,
सो मच।
थैंक यू
थैंक
वेरी
यू।
मच।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। और अमेरिका में फंसे इन पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की पाकिस्तान वापसी की फ्लाइट्स के बारे में जब हमने रब्ता किया पाकिस्तान एविएशन डिवीजन के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार खोकर से, तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर जवाब दिया कि ये तालिबे इल्म अपने नज़दीकी कौंसिल खानों और सफारत खानों से रब्ता करें और अपना नाम वहाँ रजिस्टर करा दें, जबकि वो एक दो रोज़ में इन फ्लाइट्स की तफसीलात से हमें मुत्तला कर देंगे। इस वक्त हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ह्यूस्टन में कौंसिल जनरल पाकिस्तान जनाब अबरार हाशमी को, उनसे हम पूछते हैं कि इन एक्सचेंज स्टूडेंट्स का जो यहाँ अमरीका में फंसे हुए हैं पाकिस्तान के, इनके लिए सफारत खाना क्या कुछ कर रहा है, कौंसिल खाने क्या कुछ कर रहे हैं और इनका क्या फ्यूचर है। तो अस्सलाम वालेकुम अबरार हाशमी साहब।
वालेकुम अस्सलाम यासमीन जमील साहिबा, थैंक यू वेरी मच। और वॉइस ऑफ अमेरिका का बहुत शुक्रिया कि आप एक गैर मामूली सूरत हाल से हम सारे नमदस्मा हैं और इसमें आप माशाल्लाह ये कवरेज कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया।
अबरार हाशमी साहब कुछ बताइए कि जो एक्सचेंज स्टूडेंट्स यहाँ अमेरिका में पाकिस्तान के फंसे हुए हैं उनके लिए वापसी की फ्लाइट्स का क्या बंदोबस्त हो रहा है या मुमकिन है। ये स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, इनकी परेशानी को सफारत खाना या कौंसल खाने जो यहाँ पाकिस्तान के हैं अमेरिका में वो इनकी क्या मदद कर सकते हैं, कुछ वजाहत कीजिए।
यस्मीन, ऐसा है कि हर कॉन्सुलेट और एम्बेसी जो US के अपने अपने जुरिस्डिक्शंस में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमने वेबसाइट पे भी हेल्पलाइन 24/7 और सारे जितने हमारे दफातर के नंबर हैं वो हमने डिवर्ट किए हुए। मैं सर्विसेज की बात करूँ, ऑफिस हमने बंद नहीं किए, कॉन्सुलेट इज रिमेंड ओपन थ्रू आउट और मिनिमम एसेंशियल सर्विसेज के साथ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास डेटाबेस में एज ऑफ टुडे आज फर्स्ट मई को 390 केसेस मेरे पास, उसमें जैसे आपने फरमाया F1 एक्सचेंज स्टूडेंट्स की भी खतरा तादाद मौजूद है। हमारे पास एक और कैटेगरी है जो बड़ी वल्नरेबल है, वो HEC के जो स्कॉलर आते हैं या डॉक्टर्स हाउस जॉब के लिए आते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए रिसर्च यहाँ पे फेलोज आते हैं 6 months to 1 year, 9 यंग एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बहुत ज्यादा वर्ड है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब इसमें यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो कि इसको पूरा करता है, मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, वो उनके साथ भी इन टच है, हमारे साथ भी इन टच है। अल्हम्दुलिल्लाह दो फ्लाइट जो है यहाँ से कमर्शियल जा चुकी हैं, कम से कम मेरे इस काउंसलेट के एरिए से अराउंड 20 ऑफ दो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी जो कि डेस्परेट थे जाने के लिए, वो वापस जा चुके हैं। एक फ्लाइट यहाँ 26 को गई है, 26 अप्रैल को आगे लाहौर पहुंची है दोहा से, कतर के साथ गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अरेंजमेंट की है। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को भी इजाजत मिल गई है कि वो यहाँ पर अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करें, लेकिन उसके लॉजिस्टिक्स और बाकी डिटेल्स हम वर्कआउट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बाय मिड ऑफ मई अल्लाह ने खैर की तो ईद तक मैक्सिमम लोग जो है ये वापस अपने घर पहुंच जाए।
तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए आप मैसेज दीजिए, न सिर्फ ये कि वो आपके एरिया के हों, ह्यूस्टन के हों, बल्कि पूरे अमेरिका में जहां जहां कहीं वो एक्सचेंज स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं, उनके लिए एक जनरल सा एक मैसेज दीजिए ताकि वो कुछ इत्मीनान उनको हो और हम उनको उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे आपका।
बिल्कुल, इन सारे के स्टूडेंट्स और जहां जहां उनके वालिदैन भी हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहीं हर तरह की कोशिश कर रही है, और हमारे पास बाकी लोगों की भी रजिस्ट्रेशन है। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, हमारे एम्बेसडर डॉक्टर असद मजीद खान उस पर बहुत ज्यादा काबिश कर रहे हैं। उन्होंने सेंट्रली जितने भी स्पेशली एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सेंट्रली वहाँ पे वॉशिंगटन DC में भी एक डेटा बेस बनाया, वहाँ पे एक ऑफिसर को जिम्मेदार बनाया और वो इन टच हैं सबके साथ। और इसी तरह हम सारे काउंसिल जनरल्स भी अपने अपने एरियाज में उनके साथ रबते में हैं, और इंशाल्लाह जो जो जब जाने चाहेंगे विद इन नेक्स्ट 2 to 3 weeks अल्लाह ने खैर की तो सारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान, वो जाने के काबिल होंगे।
बेहद शुक्रिया।
उसके अलावा किसी किस्म की जरूरत हो, मैं ये भी आपकी वसाफत से कहता चलूं कि काउंसलेट जनरल ह्यूस्टन हो या बाकी मेरे कोलीग हो, एटलीस्ट मैं अपनी हमारी हेल्पलाइन मौजूद है, मेरे अपने नंबर्स मौजूद हैं, मेरे कोलीग्स के नंबर मौजूद हैं, ऑफिस के नंबर्स में भी कॉल करेंगे तो दे वेलकम टू आर मोबाइल। हम हर वक्त आपके सर्विस के लिए हाजिर हैं, और मुझे काफी कॉल्स आ रही हैं, किसी को रेंट की मदद की जरूरत है, किसी को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की हद की जरूरत है। जिस तरह भी यहाँ पे इब्ने सीना और अशफा क्लिनिक के साथ मिलके हमने किया है कि टेली मेडिसिन भी हम सर्विस कम्युनिटी के थ्रू दिलवा रहे हैं और उनको वहाँ मेडिसिन भी डिलीवर करवा रहे हैं जहां जहां से हमें कॉल आ रही है। इसी तरह कुछ लोगों को ग्रोसरीज की मुशाकिल हैं, लॉजिंग की मुशाकिल हैं, डॉक्यूमेंट्स की मुशाकिल हैं, हम इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं। जो भी जरूरत जिसकी है इन सर्कमस्टेंसेस में, अपने तहीं हमारी पूरी कोशिश है कि देखो एन एक्स्ट्रा माइल, जैसे मैंने बताया कि हमने अपने ऑफिस को एक दिन भी बंद नहीं किया, लेकिन हम सब कम्युनिटी के मेहमान को जरूर ये कहते हैं कि आप जब तक एक्सट्रीमली एसेंशियल ना हो, आप हमारे प्रेमिसेस की विजिट ना करें, हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन सर्विसेज में वीजा भी है, पासपोर्ट भी है, NICOP भी है, और अब हमने ये रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन कर दी।
बेहद शुक्रिया अबरार हाशमी साहब आपका। ये थे ह्यूस्टन में कौंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब अबरार हाशमी, जो बता रहे थे कि यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट्स और दूसरे अमेरिका में फंसे हुए एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाना और कौंसिल खाने क्या कुछ कर रहे हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की खसूसी नशरियात से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین جمیل.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.